कुछ और भी इच्छा भी शुरू पड़े थे आपको का भाव, सखा का भाव, आचार्य का भाव और सौहृद का भाव उसमें मिला हुआ होता है। यहाँ पर सनातन को स्वामी शिक्षा गुरु देंगे, तो पुस्तक का कारण मत देखो।
शिक्षा
गुरु में कुछ गौरव भाव होता है।
तो आप अपने बीवी के साथ कैसे हिंदू के पता चलता
दो नाते कर लिए थे, दो नाता था ऐसे
ना, फिर भी विचार ऐसा है
कभी उनसे तो हमारा
बहुत ज्यादा रख करके बात करनी चाहिए, गुरु जी के साथ बहुत ज्यादा रख करके बात करनी चाहिए, नहीं तो प्रागृत व्यवहार हो जाएगा, प्रागृत व्यवहार जहाँ पर आएगा
वहीं पर उसकी अपेक्षा नहीं रखता
अपराध।
जैसे काका है छोटा सबसे अपनी उम्र का, तो वो काका से कैसा व्यवहार होता है, भाई भाई कैसा, सखा का भी भाव। शिक्षा गुरु ऐसे हैं कि सनातन गोस्वामी के अभी गुरु स्वामी हमारे गुरु स्वामी या चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा गुरु से भगवान वो कुछ बंधुत्व और सौहृद बन करके आते हैं, इसलिए उनसे अधिक दुराव नहीं है, वो मर्यादा भाव इत्यादि भी नहीं जाए, एकदम घुल मिल करके एक हो जाए। यहाँ तो परस्पर देखो उद्धव जी का और नारद जी का और गोप कुमार का व्यवहार देखो परस्पर कैसा, ये दोनों गुरु हैं उद्धव जी और ये अभी गुरु के गुरु हैं, इनको अभी साधन में है, बैकुंठ में तो साधन नहीं है, तो कभी ऐसे मालूम हो रहा है कि ये कुछ साधन वक्त कर रहा है, अज्ञ भाव दीनता और परस्पर परस्पर कितना सौहृद भाव, उसी प्रकार से गुरु से सौहृद भाव भी नहीं तो अपने हृदय की बात को कैसे बताएं। यहाँ पर उद्धव जी के घर में और उनके मनोभाव को देख करके नारद जी द्वारका में आए और गोप कुमार को उपदेश देते हुए भी उनके मन खेद का कारण नारद जी स्वयं जानते हैं और कभी उनसे पूछते हैं, और ये अंतिम बदला है जिसे आप सभी जानते हैं, मैं क्या बतलाऊं, इसलिए आप ऐसे उपाय कीजिए हमारा खेल। उद्धव जी ने नारद जी ने उद्धव से कहा तुम ब्रजवासियों के प्रति बड़ी सहानुभूतिशील हो और उनको सांत्वना देने वाले हो, और तुम्हारे ये निकट तुम्हारे घर पर रहता है और इतना दुखी है और एक क्षण के लिए भी इसको तुम सांत्वना नहीं दे रहे और इसका दुख बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो उद्धव जी ने क्या इसका मन खेद यहाँ पर दूरी नहीं हो सकता असंभव, क्योंकि इसका जन्म ब्रजभूमा वयम जात तस्या गोवर्धन आचर गोपाल प्रार्थना निष्ठु विशिष्ट अस्मन महाभार। इसका जन्म गोवर्धन में और भी गोकुल में हुआ और ये गोचारण में ये सब समय स्वभाव जनित गोपाल से होकर के और गो का पालन करते हैं महाराज, और गोपाल की उपासना भी श्रेष्ठ है, ये तो हम लोगों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, उद्धव जी नारद जी से कहा, नारद जी सुन करके बड़े अपलाबित और लाभित होकर के नित्य करने लगे और उद्धव जी को आलिंगन कर दिया, पकड़ कर आलिंगन किया और बड़े उत्साह के साथ में बोलने लगे, उद्धव गोपकुमार जैसे अपने अभीष्ट को लाभ कर सके और ये इसका दुख दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय नहीं। संतों का जन्म किस लिए होता है, उनका आविर्भाव किस लिए होता है, तो जगत के कल्याण के लिए हुआ। अपना कोई भी कार्य उनका नहीं, संसार में आने का उनका कोई भी कारण नहीं, बस दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हुआ है। तो आप ऐसी कोई उपाय कीजिए, ऐसा उपदेश कीजिए जिसको सांत्वना हो जाए, अप्रवित उद्धव जात जाए, क्षत्रियो हम महामुने उपदेश प्रदाने तन्नाधिकारी परिस्थिति। ने कहा, उद्धव जी हंसने लगे कुछ और हंस करके कहते हैं कि देखो, देखिए नारद जी, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों का उपदेश देने का अधिकार है, ये तो ब्राह्मणों का ऋषियों का मुनियों का ये अधिकार है। अब विशेषकर कि जहाँ आप उपस्थित हो वहाँ पर हमारा उपदेश देना संभव है, गुरु के सामने किसी को उपदेश देना नहीं चाहिए, विशेष करके नाम अपराध के ये कोई अपराध का अंतर्गत आता कि गुरु जहाँ बैठे हों, साधु जी की मूर्ति हो, कोई उच्च वैष्णव बैठे हों, तो उस किसी का शासन नहीं करे।
32 प्रकार सेवा अपराध
और
सेवा
अपराध 64 प्रकार उसके अंग में, गुरु जी के सामने किसी को शासन मत करो, मैं दुरुस्त कर दूँ, क्या तुम सेवा नहीं करता है, गुरु जी की बात नहीं मानता है, ऐसा खबरदार है। और गुरु जी के सामने किसी पर आदर भी मत करो, किसी की प्रशंसा भी मत करो और किसी को प्रणाम भी मत करो। ठाकुर जी के सामने भी ऐसा है, किसी को शासन मत करो, किसी पर अनुग्रह भी मत करो। तो आप यहाँ पर उपस्थित आपके सामने में इसको कैसे उपदेश, एक तो उपदेश देना क्षत्रियों के लिए संभव है और दूसरा यदि उपदेश दोगी तो आपके सामने कैसे उपदेश दे सकता हूँ। आप जगत गुरु हैं, आप भक्ति मार्ग के आदि मध्य और अंत वाले तीनों समय में आप गुरु हैं, आपके सामने ये कैसे उपदेश दें। नारदो नितराम उच्च विहस्य उद्धवम न वैकुंठे अप्य एतास्मिन खत्रिवत्तम अपिस्तव। नारद जी उपहास करके कहने लगे, उद्धव वैकुंठ में आने पर भी तुम कभी क्षत्रिय जाति का अभिमान कैसे रह गया, बड़े आश्चर्य की बात, अभी तुम क्षत्रिय है, साधन अवस्था में ही चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश है तो तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, तुम सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ और ये सब ने गोपी भर्तु साधन अवस्था में ही जबकि दूर हो जाता है ये जाति पाति और सन्यास और ब्रह्मचर्य और विधस्तता सब नहीं रखना चाहिए। कौन कुल में उत्पन्न हुआ, भगवान का भजन करता है उसका जाति कुल क्या, वैष्णव का जाति बुद्धि करना ही अपराध है, क्या वैष्णव जाति बुद्धि स जाति नरकम ध्रुवम अर्चे शिलाधीशु गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि विष्णु व वैष्णवानं पाद तिरुथे अम्ब बुद्धि
विष्णु वा वैष्णव सर्वे सरे से तरी तरह समझी यस नारद की बात।
वो नार्थिक व्यक्ति है। इस श्लोक को याद करके इस संसार में चलना चाहिए अपना। तो ये बैकुंठ में आप आ गए, साधक की स्थिति में ये सब नहीं होना चाहिए। विदुर कौन जाति के थे? कौन है? दासी। ये अपराध इसलिए वैष्णव में जाति बुद्धि कभी नहीं होना चाहिए। जबकि ना लौकिक बुद्धि से ही होने का है। कभी खबरदार, खूब सावधानी से रहना चाहिए। वैष्णव में जाति बुद्धि कभी नहीं। वो कृष्ण की जाति के हैं, अच्युत गोत्र के हैं। यदि वैष्णव है तो हमें तो हम लोग जैसे तो है ही हैं अभी संसार। तो करें कि आप बैकुंठ के भी ऊपर द्वारका धाम में आकर और आपने वैष्णव बुद्धि छपी। नारी से पूछा जाता कि आप कौन है तो वो कह देते मैं तो ऋषि महर्षि, मेरी जाति जाति नहीं है। वो कह दो किंतु उद्धव नहीं कहेंगे। तो इसलिए उद्धव से ये बड़े नाराज भी हैं है कि नहीं? नारद जी बड़े हैं कि उद्धव भी बड़े हैं? हैं कैसे बड़े हैं? इनमें अभी जाति और नारद जी में यही है। नारद जी में अभी सौहृद भाव नहीं आया और इनमें भाव आ सौहृद भाव की भजन में जरूरत है। पहली स्थिति जो है उससे तो ऊपर उठेंगे, किंतु उससे ऊपर उठकर के कृष्ण में सौहृद प्रभाव है। जितना ही है सौहृद प्रभाव जितना आएगा, ममत तो उतना अधिक होगा, प्रीति भी उच्च को प्रति चलेगा। ब्राह्मण वंश वाले में ये थोड़ी सी कमी है। तो कृष्ण को ग्वाला खा रहा और हम ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, ये गड़बड़ होता है। दूसरे कुल वाले ये ऐसा समझेंगे। इसलिए ये सब चीज दूर हो और वो भाव सहोद भाव हो। इसलिए गोकुल में जन्म, गोवर्धन में जन्म, वृंदवास में जन्म, ये होना जरूरी। उद्धव जी ये हंस रहे हैं नारद जी के भाव को लेकर। नारद जी को हंसते देख करके उद्धव भी हंसने लगे। बात तो ठीक ही कह रहे हैं, इसे वो भी हंसने लगे। उद्धव सस्मितम प्राह किम भुजासान माम इर्दिशम अपेक्षित किलास्माकम प्रभो अप्य आयाति न। उद्धव जी हंस करके कहने लगे, आप हमारी बात क्या करते? अरे तुम हमारे प्रभु जी को देख लो, स्वयं पर ब्रह्म होकर, समस्त कारणों के कारण होकर के, सच्चिदानंद घन होकर के, और अपने को कभी ग्वाला और कभी क्षत्रिय अभिमान। तो इसमें हमारी हो गई क्षत्रिय अभिमान, तो ये कौन सी बन जाएगा? प्रभु का आज तक नहीं छूट पाया ये अभिमान। भौमदार का मत यथा तत्र, यथा तत्र जैसे वहां, अत्रापि यहां भी सद्धर्मम परिपालन, जैसे वहां पालन करते हैं वैसा यहां भी पालन कर रहे हैं सद्धर्म का। माने क्या कहा
भगवान जैसे यहाँ लीला करते हैं 16,000 महिषियों के साथ, यहाँ इस द्वारका में
तत्र माने
तत्र वहाँ जैसे करते हैं यहाँ भी करते हैं अपराजित द्वारका में।
यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। तत्र माने कहते हैं दूर को और अत्र कहते हैं निकट को। अभी तत्र माने कहाँ बात हो रही है? वहाँ वैकुंठ वाले, इसलिए अत्र माने होगा वहाँ और तत्र माने होगा यहाँ के लिए, भौम वृंदावन के लिए तत्र भी होगा, क्योंकि वहां से बात चल रही है, वहां से तत्र होगा यहाँ और अत्र होगा वहां। तो ये कह रहे हैं भौम वृंदावन तत्र, वहां पर जैसे उनके अभिमान है, रुक्मिणी मेरी
पत्नी है,
विवाहित पत्नी है, कहाँ यहाँ पर विवाह कैसे हुआ, पहले कोई भी परिचय नहीं था, ब्राह्मण और दूसरों लोगों के मुख से वो सुनती थी रुक्मिणी बचपन से ही, और सुन करके कृष्ण का वीर विक्रम सौंदर्य उनको कृष्ण से पूर्व राग के रूप में प्रीति हो गई, और मन ही मन संकल्प कर रखा था मैं यदि विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी और किसी से करूंगी नहीं। अब कृष्ण से कभी भेंट नहीं, कभी नहीं देखा, किंतु प्रतिज्ञा कर रही हम उनसे शादी करेंगे। जब बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, अब कसम कसम चलने लगी, कसम कसमा क्या रुक्मिणी कह रही, रुक्की कह रहा है उसका भाई, हम तो अपने बंधु प्रिय मित्र शिशुपाल से इसकी शादी थे, कोई बड़ा नौजुवक, बड़ा वीर और बड़ा सुंदर, बड़ा गुणी है, अरे उसके मित्र जैसे कैसे हैं, जरासंध जैसे व्यक्ति, मैदानों जैसे लोग, नरकासुर जैसे पंडित वीर पुरुष और खालजौन जैसे मित्र उसके हैं, और मथुरा का कंस तो था उनको चला गया, ऐसे ऐसे वीर लोग उसका सम्मान करते हैं, इसलिए हम तो उसकी शादी, उसकी शादी पहले हो चुकी है। फिर भी पिताजी कह रहे हैं इसके भाव माता जी से जान रखा है, रुक्मिणी की मैया अपने पति से कह रही है कि ये बचपन से ही ये कृष्ण को ही अपना बना चुकी है, ये दूसरे से शादी नहीं करेगा, आप उसी से शादी करें, उनका भी मन ऐसा है, किंतु उसका भाई क्या कह रहा है, रहने नहीं देंगे घर को, मैं उसको भी सीधा कर दूंगा, आपको भी सीधा कर दूंगा, कंस जैसे कम नहीं था, हम उसी के साथ में शादी करें, मेरी बात चलेगी, और उसने एकदम स्थिर कर लिया, और बारात भी आ गई है, धीरे धीरे शादी का ये सब कुछ ठीक हो गया, और नहीं चाहने पर भी उनके पिताजी क्या है,
भीष्मा
उनकी इच्छा है, समस्त ग्राम वालों की इच्छा है, कुटुंब वालों की इच्छा है कृष्ण के साथ में, किंतु वो दुष्ट करने नहीं दिया, इसलिए सबको निमंत्रण दिया गया, कृष्ण के पास निमंत्रण भी नहीं दिया, किंतु उसने कृष्ण को पत्र लिखा ब्राह्मण के द्वारा, मैं कल तक देखूंगी, कल शाम को विवाह है, रात में सवेरे तक उनका आ जाना चाहिए, और नहीं आएंगे तो मैं जल करके डूब करके गिर करके विष खा करके जैसे तैसे मैं सुना, और वो गया रात ही रात, उसके लिए रथ किया गया, और शाम को कृष्ण रात में बैठे थे, सवेरे का चला, शाम को वहां पर पहुंचा, पहुंच करके कृष्ण मोक्ष में राजसभा में थे, पत्री देखा, और पत्री बलदेव जी को दिखलाया गया, दिखलाने के बाद में कुछ स्थिर नहीं किए चले आए, और रात ही रात में चल दिया अकेले, बलदेव जी को पता लगा वो भी चले, ब्राह्मण को भेज दिया, अपने साथ ले लिया, और द्वारका में जाकर वहां कुंडी नगर वहां पर उपस्थित हो, राजा ने सुना कि कृष्ण भी आया, बिना निमंत्रण का आ गया, अच्छा उसके लिए घर और ये सब चीज कर, इन लोगों ने देखा जैसे आंधी आई, ये कुछ न कुछ खुराफात करेगा, इसे सेनाओं को एकदम प्रस्तुत कर दिया, कृष्ण वहां पर रहे, खाया पिया, और रुक्मिणी जब देवी पूजा करने के लिए ग्राम सीमा से जरा बाहर निकली, राजमहलों से और ये रथ लेकर के ठीक उसी समय में सब सेनाओं को भेद करते वहां पर पहुंच गए। और रुक्मिणी को इशारा किया, रुक्मिणी फुंघटता ने भी झट रथ पर आकर के बैठ गई और कृष्ण ने घोड़ों की बात को उसके हाथ में दे दी और अपने अस्त्र शस्त्र तैयार होकर के धनुष बाण एकदम तैयार हो और वो रथ लेकर के चल पड़े चल पड़े। रुक्मिणी खुद अपने हाथों से उस समय क्षत्रियाणियां भी रथ चलाना युद्ध करना ये सब जानती
थी, जैसे की लड़कियां जैसे स्कूटर चलाती हैं कार चलाती हैं और क्या कम है
ना तो उस समय अधिक है। लेकर के चल पड़ी और उससे उसके भाई सब लोगों को हराया, जरासंध को भी हरा दिया है और वर ठाकुर जो बने हुए थे शिशुपाल जी, तो जिसे आप लोगों को हम लोगों को हराना था ये बड़ा दुष्ट, ये तो काल के द्वारा हम लोग हारे हैं, इस कृष्ण के द्वारा नहीं हारे, ये क्या है। बलदेव जी भी आ गए, युद्ध खूब घमासान युद्ध हुआ और कृष्ण चले गए। बीच में रुक्मी पहुंचा, उसकी दाढ़ी उड़ी सब काट कर और उसकी चोटियां रख दी पांच-सात और उसको बड़ा गर्भित और लज्जित किया। बलदेव जी ने छोड़ा दिया नहीं तो उसको भी जन्म दिया। फिर वहां पर आए भोज दिवाली की तरफ में अर्जित वहां पर मथुरा नगरी द्वारकापुरी सही और उसमें बड़े धूमधाम के साथ में शादी। अच्छे ये जो अभी बतलाया गोलोक में वहां वैकुंठ में जो द्वारका वहां पर ये होगा कि नहीं, ये धूमधाम से शादी और रुक्मिणी सज करके आएगी और रथ के ऊपर चढ़ी और भगी और युद्ध हुआ ये सब काम होगा कि वहां पर क्या होगा यही देख लाना है। यही पर ये विशेषता वहां पर भी तो दर्शक लोग भाई हैं, लीला वहां पर भी होगी किंतु यहाँ पर आवेश अधिक कुछ है और आनंद और नूतनता है कुछ। वहां पर भी लीला होगी, ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं, वहां पर अभिमान लीला कराएगा ये ऐसा हुआ था ना? ऐसी रुक्मिणी की शादी ऐसे हुई, कल ही ऐसी हुई, ऐसी वहां पर अभिमान होगा इसको कहते हैं।
हुई थी ये अभिमान है परंतु ये शादी हो रही है ऐसी स्थिति तो नहीं है
तो यही तो कारण
कुछ ये अखंड काल में यदि शादी होने लग जाए तो कब शादी होगी और कब तक तो काल की सीमा में आ जाए,
इसलिए थोड़ा सा वैशिष्ट उस जगत से इस जगत की दिला में कुछ है ये कहने का तात्पर्य है। एक ही तत्व पात्र भी एक है, जितने पात्र हैं वहां वहां पर यहाँ पर भी वही पात्र हैं किंतु लौकिक पात्र नहीं। लौकिक में जो बद्ध जीव हैं या कुछ उन्मुख जीव हैं विमुख जीव हैं ये सब वहां नहीं है, पहुंच ही नहीं सकते, वहां पर केवल सिद्ध परिकर लोग हैं किंतु वहां पर भी होती है किंतु यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ऐसी विशेषता है। तो उसी को ये उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारा अभिमान तो कुछ है ही है या मैं छत्री हूं, हमारे प्रभु का ऐसा ही अभिमान। ये कुंडिन नगर नरेश जो थे भीष्मा, ये कौन जाति के थे, तो वहां पर भी वही रहेंगे। अच्छा ये अभिमान वहां पर क्यों है, यहां पर जो लीला की ना वही का अभिमान वहां पर, ऐसे शादी हुई वहां पर हाथ जो पढ़ रहा है जो लीला कथा जो चल रही है वहां पर ऐसे ही वो सब पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी के साथ में ऐसे शादी हुई, ब्राह्मण भेजा और गया वहां अपनी उत्सुकता से रुक्मिणी, एक एक सेकंड उनका कैसा जा रहा है जब कृष्ण नहीं आ रहे हैं।
तब तो जाति को अनित्य नहीं मान सकते, जाति तो नित्य है,
यही यही समझो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो जाति
आया कहां से इस जगत में आया कहां से
मुख बाहुर पादेन धर्म सस्य समय सह चत्तार जगिरे वर्ण गुणैर विप्रादय पिता।
अच्छा, अब तुम लोग विचार करना सुनो और फिर हमको बतलाना कि क्या बात है। यही तो लीला है। इस लीला में आवेश हो जाए तो बस काम पूरा हो जाए। ऐसा आवेश होना चाहिए जैसे उन पात्रों को आवेश हो जाए। अब ये रुक्मिणी को ऐसा आवेश होगा कि कृष्ण आए अभी नहीं आए, क्या होगा, अब 20 मिनट खा करके जरूर मरूंगी। क्षण क्षण में उनको कैसा बीत रहा है, एक क्षण भी उनके लिए जब कृष्ण नहीं आए, जब पता लगा कि कृष्ण आए हैं तब उनकी कैसी स्थिति है। और फिर वो जबकि जा रही हैं पूजा करने के लिए, एक एक पग पर उनकी कैसी कैसी भावनाएं हो रही हैं, इसी को लीला चिंतन है। जो उनके हृदय में हो, हमारा हृदय भी उसी के समतल में आ करके उन लीला रसों में जब डूब जाए, इसको कहते हैं। इसी तरह से कृष्ण की ये सब ब्रज की लीलाओं में भी उसको चिंतन करते हुए इस प्रकार से डूब जाए आदमी, जब पता ही नहीं चले कि दिन गया कि रात गई कि क्या हुआ कि क्या, ऐसे इसको कहते हैं आवेश। आवेश तदन हित्वा बहुवन
तदगतिम गता।
ये आवेश भक्ति से जैसा आवेश नहीं होता है, बल्कि शत्रु भाव में आवेश आ जाता है। अब यहाँ पर जो लीलाएं हुई विवाह के समय में रुक्मिणी और कृष्ण के, कैसा आवेश रुक्मिणी का कृष्ण और कृष्ण का आवेश कैसा हुआ होगा। रात में दिन, आधी रात में वहां से रस लेकर के अकेले चले आए, ऐसा आवेश। पर प्रभु को कोई चिंता इच्छा करते थे कि हमारी स्त्री हो जाए, हो जाती तो नहीं। इसी का नाम भक्त का भगवान के लिए और भगवान का ऐसा आवेश हो जाता है। यदि भगवान में भगवत्ता का भाव होता है और भक्त में भी सर्वज्ञता का भाव होता है तो ये चीज नहीं होती। और ये जो होता है वैकुंठ में होने पर भी, ये होता है केवल योग माया की सहायता से। ऐसा योग माया की कृपा भी ऐसे सब पर नहीं हो जाएगी, तो जो भी आदमी होगा उस पर ऐसे होगा। तो उद्धव जी और नारद जी दोनों आदमी हंस रहे हैं, क्यों, ये सब लीलाओं के स्मरण से हंस रहे हैं। उनका भी आवेश देखो, अभी उद्धव का आवेश नहीं दिया तो उद्धव जी कहते हैं ये तो हमारे प्रभु का भी तो आवेश नहीं गया। कृष्ण की जितनी भी द्वारका की ब्रज की लीलाएं हैं ये सब क्या चीजें हैं, उस भाव में आवेश का। पर ब्रह्म को आवेश नहीं होना चाहिए, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्य में, उनमें आवेश कैसे हो जाए। हम लोगों का बद्ध जीव का होना आवेश, अभी हम लोग आविष्ट हैं कैसे, अभी शरीर में जड़ शरीर में हमारा आवेश, ऐसा ही आवेश उसमें हो जाए ना तब तो काम बन जाए। आवेश बुरा नहीं है, आवेश अपने में ये भगवान का एक सुंदर दिया हुआ उपहार है। यह आवेश यदि कृष्ण में हो जाए बस काम बन जाए। आवेश को बदल देना है, कुछ भी नहीं बदलना है, आवेश को केवल बदलना है। तो भौम वृंदावन की तरह यहां पर भी सवेरे कृष्ण गैया मंगाते हैं, अच्छी अच्छी गैया, दुधारू गाय, बछड़े के समय, बछड़ों की अपेक्षा बछड़ी के समय, क्यों, ये भी भविष्यत में गाय बनेगी, इसका दूध उसको मिलेगा। गाय को और भैंस को यदि पुरुष बच्चा हुआ तो सबका मन खराब हो जाता है, और पुरुषों को स्त्री बच्चा होने से गड़बड़ हो जाता है, उनका गोद सूना दिखता है, क्योंकि लड़की में खर्च करना पड़ेगा, कितनी चिंता है, और लड़का कमा करके लाएंगे। और जातियों में ठीक विपरीत है, इसका ऐसा होगा। लाभ सब मनुष्य क्या करता है, लाभ की दृष्टि देखता है।
वहां पर कृष्ण को कौन सा ऐसा लाभ है जो जिससे
भेद भावना है, वो भक्तों को प्रसन्न करना है, यही बात है। कृष्ण सब समय अपना लाभ ये देखते हैं हमारे भक्तों को कैसे अनुरंजन करके उनको आनंद दूं, और भक्तों का होता है कृष्ण को कैसे मैं करूँ कठपुतली की भाव जो उनको मैं तदुक्ता नारदो हर्ष भार आक्रांत मानसा उत्प्लुत उत्प्लुत चाक्रोश इदम माह सुविस्मिता। ओ भगवतो लीला माधुर्य महिमाद्भुत तदेकनिष्ठो गांभीर्यम सेवकानां च तादृशम्। वही जो बतला रहा था वही उद्धव की बात सुनकर के नारद जी प्रेम में प्रमत्त होकर के कभी हंस रहे हैं कभी कूद रहे हैं कभी नाच रहे हैं कभी, क्यों? लीलाओं का स्मरण होने से क्या ये प्रभु विश्व ब्रह्मांड के नियंता समस्त कारणों के कारण होकर के आज गोदान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। गोदान का किस लिए कर रहे हैं? आज उनको पुत्र भया है। प्रद्युम्न जी आज प्रकट हुए, कृष्ण ने कहा कि आज 60,000 गायों को ले आओ कि 80,000 की 1,00,000 गायों और उन पर सोने की चादरें सब चढ़ी हुई, सिंहों को उसमें सोने में लगा और पूर्व को चांदी से उसे मत, और एक गाय के साथ में स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए और गायों का खाने के लिए खर्च भी इसमें चाहिए, सब ये दान चला और उसके साथ में देने क्या क्या दान कर रहे हैं। आज लड़का उनके साथ में ब्राह्मणों को नटों को सबको दान, आज कितना द्वारकापुरी में आनंद हो रहा है उनको लड़के की का आनंद हो रहा है ये बताओ पर ब्रह्मा आनंद हो रहा है जो जो दान करते हैं यही तो साधारण राजा की भांति क्षत्रिय की भांति ये सब कर्मों को पालन कर रहे हैं धर्मों को। नारद जी कह रहे हैं देखो तो हमारे प्रभु सर सनक सनंदन सनातन ये करेंगे, विशेष करके इस जगत में यदि कोई भक्त हो जाएगा उसके लड़के नहीं होते, उसका वंश नहीं चलता है, क्यों? ये प्रभु की बड़ी भारी कृपा है। यदि वो संन्यास ले ले और पुत्र हो तो पुत्र की चिंता करेगा ना भगवान की चिंता करेगा, धन भी उसका नष्ट कर देते हैं, कोई भी कुछ ऐसा नहीं करने देते जब वंश चल जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ आकर्षित करेगा ही, इसलिए प्रभु की बड़ी भारी कृपा है, अद्भुत कृपा है। शंकराचार्य को लड़का था, रामानुज को, मध्वाचार्य को, विष्णु स्वामी जी का मध्वाचार्य ने शादी नहीं की, रामानुज ने शादी की। उनको शायद किसी विशेष कारण नहीं तो होता है साधारण साधक भक्तों के लिए कारण सिद्धों के लिए सिद्ध तो अर्जुन और ये सब सभी गोपियां हैं तो गोपियों को भी लड़ता है। साधारण रूप में भगवान की ये प्रचुर दया है, जो भगवान का भजन करेगा उसको चिंता करने के लिए कुछ बाहर इधर उधर का कोई आसक्ति रहने नहीं देना चाहिए। सिद्ध भक्तों की अलग बात है किंतु साधकों के लिए भगवान की बड़ी कृपा है, जो काम भक्त खुद नहीं कर सकता भगवान उसके लिए सहायता करते हैं काम को करते। इसलिए नारद जी देख करके ये कृष्ण क्षत्रियों का धर्म जैसा है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? शासन करना। यदि कोई शरणागत हो गया उसका जरूर पालन, जैसे पांचों पांडव उनके शरणागत हो गए तो द्वारकापुरी को छोड़ दिया अपने लड़कों को सबको छोड़ दिया और किसके साथ उनको उनके यहाँ पहुंचे कहाँ द्वार और उनके लिए क्या किया? कभी अपने वंश के किसी व्यक्ति के लिए किसी का पैर धोया? दुर्योधन अब आया जब उस यज्ञ मंडप में तो कृष्ण क्या किए होंगे? उसका पैर धोए होंगे कि नहीं? उसका जिसका पैर धोने लायक नहीं है ऐसे कर्ण दुशासन इत्यादि सब आए और सबके लिए काम बांट किया गया और ये पैर धो रहे हैं और कौन ऐसा काम हो जो मुंह नहीं कर रहे हैं? सभी काम होता इनको क्या जरूरत थी परब्रह्म को ये सब करने की? क्या जरूरत है? जहां जब भी इनको कोई पुकारा वहां पर चले जाते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए जाते हैं, शक्तियों का कार्य इसलिए सब काम करते हैं। प्रभु जी देख करके नारद जी उनकी लीला का स्मरण करके पद्मत पर पूजित हो रहे हैं। चैतन्य देव करो दया करो विचार विचार करेंगे चित्ते पाले। ऐसे ही प्रभु की लीलाएं कृष्ण की है, राम की है, विशेष करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की लीलाएं ये लीलाएं ऐसे ही जितना ही आदमी विचार करेगा जितना उसके निकट जाएगा उसका चित्त ऐसा ही हो जाएगा जो संसार याद नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि जैसे कृष्ण की ऐसी ऐसा स्वभाव है उनके भक्तों का स्वभाव का दोनों रूप होता है। भगवान की लीला माधुर्य जैसा अद्भुत है उनके सेवक गणों का भी तदेक निष्ठ गांभीर्य और उनकी लीलाएं भी ऐसे ही अद्भुत हैं। कृष्ण की लीला अद्भुत है, राधा जी की लीला उनसे कम है या ब्रज के किसी भी परिकर्ता अपना अपना पार्ट पूरा सभी लोग प्ले कर रहे हैं। अभी पेपर में देखा एक जगह कहीं सबसे पार्ट ये जो महाभारत का हुआ था उसमें सबसे अच्छा प्ले किसने किया तो किसी ने कहा जो शकुनी का ऐसा सुंदर पार्ट प्ले करता है भले ही खलनायक हो किंतु करता है पार्ट ठीक एकदम खल जैसा ही करता है। तो कृष्ण की लीला में भी जो खलनायक कंस इत्यादि हैं अगासुर बकासुर काली इत्यादि और जो उनके अनुकूल वाले हैं सभी अपने अपने पार्ट को ऐसा सुंदर तरीके से करते हैं। कृष्ण उनको प्रसन्न करना चाहते हैं और वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे उनकी लीलाएं उनके लिए होती है उनकी लीलाएं उनके लिए।
नारद जी समझ रहे हैं कृष्ण हम लोग को उसमें उतना नहीं भावा है किंतु नारद जी को हो रहा है ये
कि देखो